اگلی سورت القلم 52 آیات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی باتیں ہیں اس میں. پہلی چار آیتوں کا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ کے نبی اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. دوسری بات, نون والقلم میں قلم کی اہمیت ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا, اور آپ دیکھیں گے کہ پہلی وحی جو تیسویں بارے میں ہم پڑھیں گے نا, اس میں بھی قلم کا تذکرہ. تو کیا پتہ چلا کہ اس سے تمام الہامی کتابیں لکھی گئیں. پھر اللہ نے قلم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. قلم ان تین چار چیزوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ نے کن سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا, اور سب سے پہلے قلم کو بنایا, اور انسان کا نامہ اعمال بھی قلم سے لکھا جا رہا ہے. اب یہ کہاں کیسے ہے, آپ کا میرا کیا اس پہ جواب ہے؟ یومنون بالغیب, جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے, تو پوچھ بھی لیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ایک بڑی خوشخبری دی گئی کہ آپ کے لیے لاجرن غیر ممنون ہے. ذرا سا سوچئے کہ اللہ کے نبی کے اجر کا سلسلہ جس نے قیامت تک ختم نہیں ہونا, کیونکہ آپ کے ذریعے دین ہمیں ملا, قرآن آپ کے ذریعے ملا. ہم قرآن میں سے ایک حرف بھی پڑھتے ہیں نا, تو اس کی نیکیاں ہمارے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچتی ہیں, کیونکہ آپ بنیاد بنے. ہم قرآن کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں, جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے. امیجن تو کیجئے کل آپ کے ثواب کی کیا انتہا ہوگی. اور ایک حدیث بھی ہے اس کے بارے میں, مشکات المصابیح کی 1257, کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا, تو کہنے لگی کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن, یعنی آپ قرآن کی ایک مجسم شکل تھے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. پھر آگے آیت نمبر 5-9 میں, جلد ظاہر ہو جائے گا کہ کون بھٹک گیا ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. جس کے دل میں شک ہوتا ہے نا, وہ اچھی سے اچھی بات کو بھی نہیں مانتا. یہاں بھی اسی بات کو بنیاد بنایا گیا کہ نہیں یقین آ رہا نا, چھوڑ دو. فلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ, آپ نہ کہنا مانے جھٹلانے والوں کا, کیونکہ وَدُّوا لَوْ تُدْخِنُ فَيُدْخِنُونَ, یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے تم سست ہو جاؤ, باقی یہ خود کریں گے. یہ جو لفظ ہے نا تُدْخِنُ فَيُدْخِنُونَ, دُہن سے ہے, چربی کو کہتے ہیں, سلپری, بٹرنگ, یعنی یہ تمہیں پھسلانا چاہتے ہیں ہدایت کے رستے سے. آپ کے میرے لیے اس میں عمل کیا ہے؟ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں دیکھیں کہ کون ہے جو ہمیں بار بار ہدایت سے دور کرنا چاہتا ہے, نمازوں سے, روزوں سے, ہمارے لباس حجاب سے دور کرنا چاہتا ہے. تو آپ فارم ہو جائیں, ایک بات آپ نے اگر ان کی غلط مان لی تو اگلی وہ خود ہی منوا لیں گے. اور آج دنیا میں ہدایت کی روڈ سے گمراہی کے راستے پہ جانے کا یہی طریقہ ہے. ایک دم نہیں کوئی پھسلتا, تھوڑا تھوڑا کر کے پھسلتا ہے. اوپر سے گرنے والے کو اگر کوئی نہ روکے نا, تو وہ چوٹی سے گرتا ہے نا تو تہہ میں جا کے گرتا ہے. تو اللہ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرے. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف کردار آیت 10-16 ہے, یعنی پوری صفات پیش کر کے اللہ نے ایک کردار ہے. اصل میں بھی کوئی تھا, لیکن ہم تو اس کو ایک ایسا کردار سمجھتے ہیں کہ جس کی خواہش کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو. وَلَا تُطِعِ كُلَّ خَلَّافٍ مَّهِينٍ, ہر دور میں ایسے کردار آپ کو دکھیں گے, نبی کے دور میں بھی تھے, جو ادھر ادھر چغلیاں کھاتے تھے, خیر سے روکتے تھے, سرکش بھی تھے, حدوں سے گزرنے والے بھی تھے, اور ان کے نسب بھی کوئی اتنے پاک نہیں تھے. وجہ کیا, اتنی اکڑ کیوں ہے؟ ان کا نظام معلم و بنین, اللہ نے مال اور بیٹے دے دیے نا اس لیے. اور جب اس پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں, اولڈ ڈیٹڈ ہیں. آج بھی لوگ آپ کو کہیں گے کیا آپ پرانی کتاب پڑھ رہی ہیں, کوئی نئی چیز پڑھی ہے؟ تو پھر نئی دنیا میں جائیے, یہ دنیا بھی تو پرانی ہے. ایسے شخص کو اللہ نے کہا سر نسیم الخرطوم, ہم اس کی سونڈ پہ داغ لگائیں گے. یا نوٹ کیجئے گا, خرطوم بولا گیا, ناک نہیں, یعنی پھول پھول کے اس کی ناک سونڈ جتنی موٹی ہو گئی. تکبر کی طرف اشارہ ہے. پھر باغ والوں کا ایک قصہ ہے جس میں ان کی ناشکری اور اس کی سزا ہے, آیت 17-33 میں, اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. اصل میں یہاں پھر شکر اور ناشکری کی بات کر کے मक्का वालों को समझाया जा रहा है कि तुम्हारे पास अल्लाह ने अपनी इतनी बड़ी नेमत एक नबी की सूरत में दी, दीने इस्लाम तुम्हें मिला, लेकिन तुम्हारा हाल बाग वालों वाला है कि जो बाप तो कुछ ना कुछ सदका करता था, उसमें से जब भी फल उतरता था, बेटों ने सोचा कि हम गरीबों और यतीमों का हक मार लेते हैं, क्योंकि जब दिन में जाकर फसल काटते हैं ना, तो कोई गरीब गुरबा में से आ जाता है, कोई उधर से, हमें हिस्सा दो, और देखो ना हमारी मेहनत की कमाई है, और सारे उसमें से इतना हम उनको दे दें। आज भी बहुत सारे लोग इवन ज़कात देते हुए यही सोचते हैं। अल्लाह ने उनकी सोच पढ़ ली। रात के वक्त एक ऐसी आंधी चली, हवा आई कि जिसमें आग थी, सारा बाग जल गया। उन्होंने कहा सुबह आएंगे ना तो गरीब आते हैं, हम मिड नाइट में जाएंगे, यानी आप कह ले कि मुसबहीन सुबह सुबह, और जब वहाँ गए तो बागी नहीं है, सूखी ज़मीन है, जली हुई घास है। आप कहने लगे कि हम गलती से कहीं और तो नहीं आ गए? नहीं नहीं ये रास्ते तो सब ठीक हैं। फिर उसमें से कोई एक बोला, नहीं बल नहनु महरूमुन, हम महरूम कर दिए गए। जो उनमें से बहुत समझदार था ना, औसतुहुम, कहने लगा अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम क्यों नहीं अल्लाह की तारीफ करते, उसकी तस्बीह करते? मुराद जाए कि उसके दिए हुए में से उसके बंदों को क्यों नहीं तुम हिस्सा देते? लिहाजा फिर उन्होंने वहाँ खड़े होकर इस चीज़ का अफसोस किया, और फिर अल्लाह ने उनके हालात को पलटा दिया। क्या बता दिया कि दुनिया के इस बाग में से भी कुछ शुक्र का फल लेकर जाएंगे दुनिया से, और कुछ नाशुक्री के कांटे लेकर जाएंगे, और वहाँ इसकी सजा भुगतेंगे। फिर आगे आयत नंबर 34 से 41 में, क्या मुत्तकी और मुजरिम बराबर है? एक सवाल है, अफनचलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों जैसा बना देंगे? आप देखिए कि यहाँ मुस्लिमीन का ऑपोजिट अमूमन हमारे ख्याल में क्या आता है? गैर मुस्लिम। अफनचलुल मुस्लिमीन कल गैर मुस्लिमीन, नहीं मुजरिमीन। तकाबुल है, मुत्तकी के मुकाबले पे मुजरिम। अल्लाह या उसके किसी हुक्म को ना मानना ये बहुत बड़ा जुर्म है। फिर इसके बाद जानबूझकर नमाज छोड़ने की जिल्लत, जो ऐसा करते हैं उनको कैसे जलील होना पड़ेगा? 42 से 43 है, क्यामत के दिन अल्लाह ताला अपने पूरे जलाल और जमाल के साथ सामने आएंगे। यौम युक्शफु अन साक़ीन व युदऊन इला सुजूद, लोगों को सजदों की तरफ दावत दी जाएगी। फला यस्ततीउन, सब सजदे में चले जाएंगे लेकिन कुछ लोग सजदे में नहीं जा सकेंगे। खाशियतन अबसारुहुम, नज़रें भी झुकी होंगी। तरहक़ुहुम ज़िल्ला, ज़िल्लत भी उनके चेहरे पे छाई होगी। वजह कसूर, वक़द कानू युदऊना इला सुजूदी वहुम सालिमून, दुनिया में इनको सजदों की तरह बुलाया जाता था, जबकि ये सही सलामत है तो सजदा नहीं करते थे। तो आज आप और मैं सजदा कर सकते हैं, अभी कमर ठीक है, घुटने भी ठीक है, बिला वजह ज़मीन से ऊपर सजदा ना कीजिए। और जब अल्लाह सामने आ जाएगा फिर तो वो कहते हैं ना कि हज़ारों सजदे मचल रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। अगर आज अल्लाह अपने वजूद के एतबार से सारे पर्दों को उठाकर दुनिया में आ जाए, सारा निज़ाम बिगड़ जाए, सब सजदों में चले जाएंगे। किसी बड़े इंसान को देखकर एकदम आप खड़े हो जाते हैं, लोग रुकू में जाने लग जाते हैं, झुक झुक जाते हैं, तो सोचिए अल्लाह की ज़ात से क्या मामला होगा। फिर आगे हक़ को झुठलाने वालों के बुरे अंजाम की बात है, आयत 44 से 47 में, कि फ़ज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, बस आप मुझे भी छोड़ दें और उनको भी छोड़ दें जो इस बात का इनकार करते हैं, मुराद कुरान है। क्या करेंगे? सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, हम उनको वहाँ से खींचेंगे जहाँ से उनको गुमान भी नहीं। ये जो लफ्ज़ है ना सनस्तदरिजुहुम, इसमें अल्लाह का एक कानून समझिए, इस्तिदराज। दर्जा क्या होता है? दर्जा बुलंदी। दर्राजा अरबी जुबान में सीढ़ी को कहते हैं, लैडर को। अल्लाह सुबहाना ताला कुछ लोगों को इस्तिदराज के कानून के तहत पकड़ता है, और ये क्या होता है? किसी को बेखबरी में पकड़ना, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा और एकदम उसकी पकड़ आ गई, खुशी वाले घर में ही मौत हो गई, नाफरमानी के नशे में चूर था और एकदम मलकुल मौत सामने आ गया। फिर इसी तरह नेमत देकर पकड़ना, नेमतों की फरावानी का शुक्र अदा करना फरामोश कर देंगे, क्या पता चला कि जितना अल्लाह ने नेमतें दी वो उतना उससे दूर हो गए। फिर इसी तरह एहसान करके ढील दी गई, फिर इसको पकड़ लिया गया। बस इतना समझिए कि हर इंसान अल्लाह की निगाहों में है, अल्लाह उसको देख रहा है चुपके से, ये कर क्या रहा है। कभी माँ भी अपने बच्चे को मस्तियाँ करता देखकर दूर से देखती है, ज़रा देखो ये करता क्या है, और जब वो कोई ऐसी हरकत करता है जिससे उसका नुकसान है या चीज़ का, तो एकदम माँ पकड़ लेती है। अल्लाह ताला कितने ही लोगों के साथ इस्तिदराज का मामला करता है, कितने ही लोग ऐसे हैं कि इनको तारीफ करके फितने में डाला गया, तारीफ हुई तो भूल गए, ये भी इस्तिदराज है। और कितने ही ऐसे लोग हैं कि जिनके ऐबों पे पर्दा डालकर इन्हें धोखे में डाला गया और पर्दापोशी की गई। तो नफ्स के धोखे हैं असल में, हम में से बहुत सारे लोग अपने नफ्स के धोखों का शिकार हैं। जब उन्होंने कोई गलती की, हमने इन्हें नई नेमत अता फरमा दी, हर गलती पर नई नेमत, उन्होंने कहा इससे तो अच्छा सौदा ही कोई नहीं, अल्लाह हमसे खुश है ना तभी हमें ये दे रहा है। देखो ना, अगर अल्लाह खुश ना होता तो फिर इतना कुछ क्या मिलता, और फिर उन्होंने माफ़ी तक मांगना छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया में तुम किसी को सरकशी और नाफरमानी के बावजूद इज्जत में, माल में, औलाद में भरता देखो तो ये इस्तेदराज है। तो हमें अपने लिए अमल की बात क्या लेनी है कि अपने हाल पे गौर कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो दौलत, माल, सुकून, खुशी मिली हुई है ये अल्लाह की रज़ा हो, कभी ऑपोजिट भी होता है। फिर आगे अल्लाह के नबी को सब्र की तलकीन है, सूरत का एंड हो रहा है 48 से 51 में, फसबिर लिहुक्मि रब्बिक, ए नबी अल्लाह के हुक्म के आने का सब्र के साथ इंतज़ार कीजिए, वला तकुन का साहिबिल हूत, और वो मछली वाले की तरह ना हो जाए। कौन? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। पीछे ज़न्नून कहा गया सूरत अल-अंबिया में, सूरह यूनुस में यूनुस भी लफ्ज़ आया, जब उसने पुकारा, यानी मछली के पेट में यूनुस किस सज़ा में या किस वजह से अल्लाह उनको ले गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आने से जल्दी की, यानी वो काम पहले ही कह दिया या उस काम की पहले से खबर दे दी जो भी अल्लाह का इरादा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने वहाँ ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन की पुकार लगाई, तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ फरमा दिया। फिर उसके बाद आखिरी आयत 52, कुरान अहले आलिम के लिए एक नसीहत है, वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, आपने मैंने इसको रिमाइंडर बनाना है। अच्छा, सारे जहान वालों के लिए, तो अभी तो हम सिर्फ मुसलमान पढ़ रहे हैं, तो ये लफ्ज़ आलमीन क्या बता रहा है कि आपने मैंने इसको अपनी सी हैसियत और अपने से रिसोर्सेज के साथ दुनिया भर तक फैलाना है इंशाल्लाह। तो ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक।